તારીખ 28/12/1993 શ્રી સમયસાર ગાથા 8 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 6 મૂળ કેસેટમાં ડિસ્ટર્બન્સ છે.
और उसके मान आत्मज्ञान स्वरूप उनके मान को दर्शन है. तीनों के वचनों में ऐसा निमित्तत्व होता है कि इस वाणी के आशय को अंगीकार करने वाले सुनने वाले इतने वाणी के आशय को अंगीकार करने वाले को भावसूत प्रकट हो जाता है. भावसूत कहो या आत्मज्ञान कहो, दोनों एक बात है.
किस प्रकार का जीव अंगीकार जी किस प्रकार का जीव अंगीकार कर सकते
जो इस वाणी जो इस आशय के लिए प्रयास करता हूं, आत्मकल्याण के लिए प्रयास करता हूं और समय साथ के आखिरी यात्रा वाले से कहा आत्मकल्याण मेरा आत्मकल्याण ये विषय सामने आते ही आने से पहले जिसने ट्रैक्टर की लड़ाई है क्या क्या लिखा है
जी
इसकी तैयारी है. जैसे चातक पक्षी बारिश का बरसात का पहला ही बिंदु नीचे नहीं जाने देता, अपने मुख में वो झेल लेता है, वैसे ही श्री गुरु की वाणी भगवान की वाणी जी वाणी जो है जिन्होंने को नीचे गिरने देता
नहीं,
अपने के चीज पूजा की सामग्री है वो पैर के नीचे कुचलना कुचलते क्या जो भी पूजा की सामग्री है पुष्प चंदन अक्षत वगैरह जो कुछ भी है उसको पैर के नीचे कुचलना गिर जाएगा क्या होगा. वाणी तो खिलती है लेकिन जो जेल से नहीं है तो परिस्थिति नीचे गिर जाने से थोड़ी नीचे कुचलने की वैसे हो जाती है. क्या ऐसा अपराध करने लायक है क्या हम इस बात को किसी कीमत पे स्वीकार करने योग्य ऐसी वाणी की उत्पत्ति आत्मकल्याण योग स्वरूप स्वरूप अनुसंधान सहित हुई होने से इसका बैकग्राउंड क्या है, इस वाणी का बैकग्राउंड क्या है. मलिन विकल्प नहीं है, मलिन राग नहीं है. इस वाणी जिस भूमिका में से उत्पन्न हुई है वो भूमिका पवित्र आत्मा है और उस आत्मा के अनुसंधान करने वाले पवित्र परिणाम है. ऐसे इस आधार से इस निमित्त से इस कारण से जिस वाणी की उत्पत्ति हुई है ऐसी वाणी जिसकी काल लक्ष्य पक गई है क्या अब वो भटकने वाला
नहीं है.
ऐसे जीवों के आत्मकल्याण में भावस्वरूप प्रकट होने में आत्मज्ञान की प्राप्ति होने में निमित्त बन जाती है. निमित अपने स्थान में है, उपादान अपने स्थान में है, कोई कुदरत की घटना ऐसी बनती है कुदरत से, युगानुयुग होता है, दीपक ये उसका आत्मकल्याण बुझाता है, तो उसका आनंद भव के परिभ्रमण का निवेदा
हो जाता है।
और इसमें इस प्रकार का निमित्तत्व सदैव विद्यमान है, इस माने में इस प्रकार का निमित्तत्व सदैव विद्यमान है, इसलिए उसकी पूज्यता है, उसको विदित है, सुप्रसिद्ध है और सर्वमान्य है, उसकी पूजा करते हैं। जिन वाणी की भी पूजा जैसे सर्वज्ञ देव की पूजा करते हैं, ऐसे जीव वाणी की पूजा करते हैं। समय सार के दूसरे कलश में भगवान अमृतचंद्र आचार्य देव ने जब इस वाणी की महिमा गाई, इसको पूजनीय बताई, राजमन जी ने टीका लिखी, उसमें अब खुद ने प्रश्न उठाया कि वाणी तो अचेतन है, क्या क्रॉस आचार्य महाराज जब इसकी कृत्यता को प्रतिपादन करते हैं तो टीका करने वाला इस भाव को खोलना चाहता है, आचार्य महाराज के भाव को खोलना चाहता है, कुछ प्रश्न उठाते हैं कि वाणी तो अचेतन है, चेतन कैसे पूज्य हो सकता है जी। तो वाणी सर्वज्ञ की वो तो सर्वज्ञ अनुसारी तो है ही, लेकिन सर्वस्थ भी हो तो ये सर्वज्ञ स्वभाव को स्पर्शित करते हुए ही करती वाणी सर्वज्ञ अनुसारी नहीं है, इसलिए पूजनीय है। क्या लिखा है, इसलिए वो वाणी पूजनीय है, इसलिए जिनवाणी की पूज्यता सैली है, तो प्रसिद्ध है और सर्वमान्य है। इस तरह दृढ़ रूप जिनवाणी के प्रति पूज्य पूर्वक बहुमान के परिणाम होना, ऐसा इसका निमित्तत्व का ज्ञान समझ होकर के पूज्य भाव होना, बहुमान होना, उसी को यहाँ श्रुत भक्ति कहते हैं, आई है उसी को श्रुत भक्ति कहते हैं। समय सारा कलश टीका दो में श्री जिनवाणी को सर्वज्ञ रूप अनुसारी, सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारी, कैसे कहिए सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारी कहकर के उसकी पूज्यता वहां दर्शाई है। और भी आधार मिला जो मिला लिया है सारा धर्मावृत अध्याय दो के गाथा 44 में यह कहा है कि जो भक्तिपूर्वक श्रुत की पूजा करते हैं, जिनवाणी की पूजा करते हैं, बहुमान करते हैं, भक्ति करते हैं, वे मनुष्य वास्तविक में नरेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, वो जिनवाणी की पूजा करते हैं, जिनवाणी के माध्यम से नरेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि गंधर्व देव जिनवाणी और जिनेन्द्र देव में द्वेष मात्र भी अंतर नहीं, ऐसा भाव है। क्या क्या कहा और भाव क्या है कि इसकी वाणी में उसकी आत्मा में हमको अंतर ही नहीं देखते, जो उसकी आत्मा पूजनीय है तो इसकी वाणी भी पूजनीय है, ऐसा ले लिया अंतर निकाल दिया। जो भाव है वो
द्रव्य का क्षेत्र का काल का अंतर को मिटा देता है। ऐसे दो ग्रंथ का अंतर नहीं रहा। भगवान जिनेन्द्र देव एक चिंतन द्रव्य है, इसकी वाणी अचेतन द्रव्य है, तो कहीं वो अंतर नहीं है हमारा। ऐसा अंतर नहीं है, इनकी वाणी में और इसकी आत्मा में हमें अंतर दिखता है। क्या बता बोला, ये वाणी सुनने वाले के भाव को प्रसिद्ध कर दिया है। किस भाव को वाणी सुनी जाती है, हमको वाणी नहीं सुनाई देती, इनके भाव इनके भाव जीने जाते हैं। वाणी में जो भाव है वही इसी को अंगीकार करते हैं। लोग तो ऐसा ही करते हैं, कोई कटाक्ष करते हैं प्रशंसा, कटाक्ष में प्रशंसा करते तो क्या समझते हैं, मैं समझते हैं वो उनको क्या कहता है, हमारी प्रशंसा करता है या हमारी मजाक उड़ाता है, अच्छी तरह जान लेते कि नहीं जान लेते, हम लोग को पकड़ते हैं। और कोई हमारे कल्याण के लिए कठोर वचन भी कहते हैं, जो उससे हमारी भलाई दिखती है तो हमें अच्छा लगता है, भलाई दिखे नहीं दिखे तो द्वेष हो जाएगा, तो ऐसा कहता है। तो वास्तविक माता में तो भाव ही देखे जाते हैं, शब्द देखे जाते नहीं है।
पूजा करते हैं सम्यक दृष्टि का निषेध करते हैं,
ये तो बहुत ये बात इसकी वाणी तक लंबा जाती है, तो ये तो सम्यक दर्शन तो इसकी पर्याय है, खुद आत्मा की पर्याय है, आत्मा रूप पर्याय है। सम्यक दर्शन नहीं, उसमें तो और तकलीफ है, दूसरी बात है सम्यक दर्शन की तो पूजा करना। पिछले तीन दिन में पहले दिन समय दर्शन के, दूसरे दिन समय ज्ञान के, तीसरे दिन समय कार्य प्रति के ग्रंथ की प्रति साथ में भी होती है और अलग अलग भी होती है। तो समय दर्शन एक पर्याय है, एक समय की इसकी तो पूजा करते हैं अष्ट ग्रंथ। पर इसका धनी जो समय दृष्टि है, इस पर्याय का धनी जो समय दृष्टि है, इसकी अष्टक्रम से पूजा की बात आती है तो उसे ना आता है कैसी स्थूल बुद्धि है, कितनी स्थूल बुद्धि है। यहाँ तो कहते हैं कि इसकी मानी पूरी नहीं है, उसकी पर्याय पर्याय तो सिर्फ इसकी बात नहीं, एक दृष्टि से इसकी पर्याय ही है तो वो तो पूरा ले रहे हैं। तो फिर मानो तो दूसरे स्टेज में फिर भी अंतर निकाल दिया, जिनेन्द्र देव और जिनेन्द्र देव की वाणी में हमको अंतर नहीं दिखता। सागर धर्मा कैसे ग्रंथ है, लेकिन
इसमें भक्ति की बात आती है। मोक्ष मार्गी परमात्मा सर्वस्व अवस्था में होने पर भी उनकी वाणी विभिन्न अंश सर्व के स्वभाव को स्पर्शित करते हुए सहज भाव से व्यक्त होती रहती है, प्रकट होती रहती है। उस इसलिए इस वाणी को सर्वत्र स्वरूप अनुसारिणी कहने में आई है। मेरे साथ तीनों काल के सभी ज्ञानियों की वाणी पर अयोधी आत्मा उपदेशक कैसे मानित होती है सभी ज्ञान की गुरुवार पर अविरोधी आत्मा उपदेशक पर अपूर्व ग्रंथ का निरूपण करने वाली होती है। क्या कहते हैं ज्ञानी के बारे में कौन सी विशेषता है यह बात कृपाल देव ने अपने शिष्यों ऐसी पत्र में उन्हें ऐसी शिक्षा बनाए इस पत्र में वो बात की बहुत सुंदर बनता है। उन्होंने डिस्टिंग्विश किया है कि अज्ञानी मां की वाणी और ज्ञानी मां की वाणी में कौन सा अंतर है किस प्रकार का अंतर है कैसे वो समझ सकते हैं कौन समझ सकते हैं और किस मुद्दे से किस लक्षण से समझ सकते हैं इसकी बहुत सुंदर चर्चा शिष्य पत्र में की है। इसमें ये बात चली है कि ज्ञानी की वाणी गुरुवार पर विरोध वाली होती है कहीं भी अपनी बात को विरोध अपनी कही हुई बात का विरोध खुद ही करें ऐसा कभी ज्ञानी की वाणी में नहीं होता लेकिन दिखता तो है कि भैया अपने आत्मग्रहण की परस्पर विरोधी धर्म है क्या हमारा त्रिकालिक स्वभाव अनादि अनंत नित्य है और एक समय के पर्याय अनित्य है तो आत्मा नित्य भी है आत्मा नित्य भी है तो क्या नित्य की बात को काट करके अनित्य कहा विरोध करके कहा क्या तो विरुद्ध धर्मत्व ऐसी शक्ति है विरुद्ध धर्म को धारण करने की शक्ति है आत्मा विरुद्ध धर्म शक्ति उसको कही है 47 शक्ति में तो ऐसी ही बात है तो उसको कहने में बात तो ऐसी है नित्य भी है और अनित्य भी है लेकिन वो गुरुवार पर विरोध है एक ही पदार्थ में ऐसा धर्म होता है और उसको कहने में आया है वो सही है गुरुवार पर अविरोधी में आत्मा उपदेश है आत्मा का प्रयोजन सिद्ध होता है अर्थ में प्रयोजन यहां आत्म कल्याण का परम प्रयोजन है इसको प्राप्त कराने वाली दीवान होती है आत्मा उपदेशक है और अपूर्व अर्थ को निरूपण करने वाली है अपूर्व अर्थ माने क्या अर्थ मेरे भाव यहां है देखो अर्थ शब्द को लोने दे जो आत्मा में आत्मभाव होता है वो अनंत काल में कभी नहीं हुआ सर्वभावी हुआ होता रहा है कि आत्मभाव की उत्पत्ति होना ही पूर्व है तो आत्मभाव को प्रदर्शित करती है जागृत चैतन्य की चेष्टा कहां दिखने में मिलती है कि प्रत्यक्ष सत्पुरुष में वो दिखने में मिलती है पर उसकी वाणी में इसकी झलक आती है क्या वो झलक अज्ञानी की वाणी में नहीं आती शब्द तो है क्योंकि झलक नहीं है उसमें देखो शब्द एक है उसकी जो झलक है वो बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है जो अज्ञानी की वाणी में पाई जाती नहीं है कहते हैं कि अपूर्व अर्थ का निरूपण करने वाले होती कहां से पता चला है सुनने वाले को कैसे पता चले कि वो अपूर्व अर्थ का निरूपण करने वाले माने हैं प्रश्न तो ये मुद्दा का प्रश्न तो वो है कि सुनने वाले को कैसा पता चले कि ये अपूर्व अर्थ का निरूपण हो रहा है कि इधर अपूर्वता आती है तो अनुसंधान हो जाता है कहते हैं
कि वो भी वो गाथा सुनते हैं, वो के वो गाथा के अर्थ पर प्रवचन चलते हैं, लेकिन भाव तो अपूर्व अपूर्व आते हैं, अपूर्व भाव आते हैं और अपूर्व भाव अपने ही अपूर्वता अपूर्वता होती रहती है। दोनों अपूर्व का अनुसंधान हो गया, जिसको इंटरलिंक कहते हैं, भावों की इंटरलिंक हो गई। ऐसे अपूर्व अर्थ का निरूपण करने वाली होती है और अनुभव सही तो होने से उसमें एक परमार्थ का ही आशय सन्निहित होने से ऐसी वाणी आत्मार्थ के लिए परम उपकारभूत निमित्त है। उस वाणी में इस प्रकार का एक अतिशय है, इसलिए उनको सातिशय वाणी भी कहने में आता है। और अनुभव सहित होने से उसमें एक परमार्थ का ही आशय छिपा हुआ है। छिपा हुआ इसलिए कहते हैं कि किसी को नहीं दिखता है, अगर किसी को दिखता है जो शब्द ज्ञानी है, शब्द के अर्थ के ज्ञानी है, जानकार है, भाषा ज्ञानी है, व्याकरण के ज्ञानी है, ग्राहक उनको ये बात दिखने में नहीं आ सकती। लेकिन जो परमार्थ प्राप्ति के लिए लालायक है और जिसकी नजर परमार्थ पर है, परम प्रयोजन पर है, उनको ये आशय पकड़ने में आता है। इसलिए वहां वो आशय है। इस 689 पत्र में इस आशय शब्द का प्रयोग 5 दफे किया है। कितने दफे किया है? 5 दफे किया है।
पांचों के अर्थ अलग अलग है, पांचों के अर्थ अलग अलग है।
आशय शब्द है और पांचों का आशय एक है। शब्द भी आशय है और इनका आशय भी एक ही है। बार बार कहना का मतलब क्या है कि जब उनको एक ही सब्जेक्ट को विस्तृत करते हैं, एलोबरेट करते हैं, तो शब्द प्रयोग बार बार आते हैं, तो इसलिए एक ही बात को कहने के लिए आशय शब्द का प्रयोग किया है। थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं इस तरह से कि ज्ञानी की वाणी कितनी भी विस्तार वाली हो या संक्षेप हो, जिसमें कुछ भी हो, संक्षिप्त विस्तार का कोई खास मूल्य अमूल्य जैसी बात नहीं है, लेकिन इसमें जो आशय है वो क्या चीज है हमें तो उतना ही समझना है। आशय माने क्या? कि वाणी का केंद्र स्थान कोई है, इसी को आशय कहते हैं। क्या है? सारे वाणी को कितने भी शब्द हो, कितने भी वचन हो, वाक्य कितने भी, लेकिन इस वाणी का एक केंद्र स्थान है, कुछ एक जगह वो खड़े रहे हैं, एक जगह वो खड़े हैं, वहां से उसी बात को कहकर कहने के लिए इनकी वाणी में जो आंतर ध्वनि निकलती है, इसकी मही ध्वनि नहीं, इसकी जो आंतर ध्वनि है, टोन है, अंडरटोन है, वो केंद्र स्थान जो है वो आत्मा का परम कल्याण है। तो हर जगह से सुनने वाले को इसका कौड़ी रचन होता रहता है, ये भी होता रहता है, सुनते सुनते तो आशय को भी नहीं करता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई शब्दार्थ में फंसता है, कोई भावार्थ में फंसता है, कोई व्याकरण में फंसता है, कोई नई ज्ञान वाला नई ज्ञान में फंसता है, शास्त्र ज्ञान में फंसता है, कई प्रकार के जो अर्थ होते हैं ये सब में फंसने का हो जाता है। जो आशय पकड़ने में नहीं आता है तो आत्मार्थी के लिए ये परम उपकार निमित्त है। अतएव ऐसी वाणी पूजनीय है और अभिवंदनीय है, वंदन करने योग्य भी है, विशेष प्रकार से अभिवंदनीय है, विशेष प्रकार से वंदन करने योग्य है। श्रुत भक्त और प्रभावना अंग धारण सभी समय दृष्टि महात्माओं को ऐसी भावना शुद्ध भक्ति के कारण वर्तती ही है। क्या जो लोग सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होते हैं
जी,
वो सम्यक दर्शन के आठ अंग है
जी,
और सम्यक दर्शन इस आठों अंग से अखंडित होता है, खंडित नहीं होता है। किसी भी सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन कभी खंडित होता नहीं। आदमी जो मनुष्य है तो विकलांग हो जाता है, कभी कोई नहीं होता है या विकल हो जाता है, खंडित हो जाता है। सम्यक दर्शन कभी खंडित होता नहीं, आठों अंगों से सुशोभित है। उसमें एक प्रभावना नाम का एक अंग है, इसका दो प्रकार है, निश्चित प्रभावना भी है, व्यवहार प्रभावना। यह शुद्ध भक्ति का प्रकरण है, इसलिए व्यवहार प्रभावना की बात लिया है। अपने स्वरूप की भावना विशेष करके सम्यक दर्शन पूर्वक जिसको प्रकट होगी वो तो निश्चय प्रभावना हुई, उसको आत्मभावना अवेद भाव से चलती है, जो मोक्ष का केवल ज्ञान का कारण है। कोई आत्मभावना केवल ज्ञान का कारण है, और बाह्य में जो प्रभावना है वो श्रुत भक्ति के साथ अनुसंधान वाली है। समय दृष्टि को यहाँ श्रुत भक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? एक विशेषण, श्रुति की भक्ति करते हैं इसलिए उसको शुद्ध भक्त कहते हैं। प्रभावना अंग होने से निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के, प्रभावना अंग धारक होते हैं इसलिए सर्व सम्यक दृष्टि महात्माओं को ऐसी भावना शुद्ध भक्ति के कारण हमेशा हमेशा वर्तती ही है। कि कैसी भावना है? कि जीवों के कल्याण हित ऐसी परम उपकार भूत वाणी अर्थात श्रुत सत्श्रुत का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। क्या भावना है? श्रुत का प्रचार प्रसार हो, जितना हो सके इतना अधिक से अधिक हो, ऐसी भावना रहती है। कृपाल देव का दृष्टांत, गुरुदेव का दृष्टांत इस विषय में हमारे लिए जीवंत दृष्टांत है। क्या कृपाल देव ने अपनी मौजूदगी में परम स्रोत प्रभावक मंडल की स्थापना की थी? आज भी ये संस्था विद्यमान है। पुस्तकालय पुस्तकालय कैसा सुबोधक पुस्तकालय उस लाइब्रेरी की स्थापना अपने उपस्थिति में की थी। इस बात का एक द्योतक है कि कृपालु देव भी श्रुत भक्त थे और उसी संस्था में समय सारादि का प्रकाशन हुआ था। समय सारादि महान परमागम ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था और गुरुदेव के हाथ में यही संस्था से प्रकाशित समय सार अपने हाथ में आया और संगीत दर्शन की प्राप्ति हुई थी। गुरुदेव ने उपकार गाया है, कृपाल देव का उपकार गुरुदेव ने गाया है और तो बात में 10 नंबर के अंक में प्रकाशित किए लेटेस्ट इश्यू में बताई। वर्तमान काल में प्रथम प्रकट करने वाले श्रीमद रामचंद्र है, हम नहीं है ऐसा कहते हैं, श्रीमद रामचंद्र है ऐसा कहते हैं। देखो खुद के शब्द है, कितने साल हुए इस वचन को, प्रकट करने वाले उनका अनंत उपकार जिस महापुरुष के लिए अपन सभी से कारण प्रत्यक्ष उपकार पूजे गुरुदेव के कांजे स्वामी के स्त्री मुख से मुखरित हुए थे, उस परम पुरुष कृपाल देव के 157वें मंगलकारिणी जन्म जन्म जयंती के पुण्य प्रसंग पर उनका प्रकाशन हुआ है, कार्तिक काल है इसलिए तो हमारे जो संपादक हैं श्री लाल जी इनके पिताजी की पुण्य स्मृति में तो देवी इधर के जो मैंने कही उनकी पुण्य स्मृति में को निःशुल्क भेज देने के लिए मैंने 11,000 रुपया कैसे शुद्ध प्रसार प्रचार की भावना होती है ज्ञानियों को कि जीवों के कल्याण के हेतु परम उपकार गुरुवाणी अर्थात सत्सु का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो के जिसके निमित्त सर्व जीव राशि संसार क्लेश से परिमुक्त हो जाए, कितने सभी हो जाए, कुछ ऐसा भी रहना है वो भावना का विषय नहीं रहता क्या पता नहीं है भावना थी उसको जगत में भव्य भी होते हैं अभव्य भी होते हैं, कुछ भव्य तो अभव्य से भी गए भी होते हैं, सब पता है लेकिन भावना में ऐसा देखा जाता तो लायक है तो नहीं है ऐसा
ऐसा भावना कभी नहीं थी।
ये संभव है कि नहीं है? जगत के अगर सभी जीव कल्याण को प्राप्त हो जाएगा तो संसार चले जाएंगे, इसलिए वो असंभव है कि वे भावना कभी देखती। ऐसी उत्कृष्ट भावना, सर्वोत्कृष्ट भावना तीर्थंकर द्रव को आती है। किसको आती है?
तीर्थंकर द्रव।
जिसके शासन में जगत के जीव कल्याण को प्राप्त करते हैं, ऐसी तीर्थंकर देव को ऐसी भावना सर्वोत्कृष्ट आती है। जब तुम उनको तीर्थंकर प्रकृति का मन होता है, इस भावना से बता इस भांति ऐसी भावना यानी के मार्ग को दृढ़ता से अनुसरण करने वाले को भी होती है।
आपका प्रश्न का उत्तर आ गया।
सब याद तो नहीं रहता है, लिखते तो है लेकिन कोई याददाश्त तो इतने तेज नहीं है कि एक एक शब्द दो एक वचन में आ रहे। प्रश्न आपने पहले उठाया, बात तो नीचे ही आएंगे। श्रुत भक्ति से मुमुक्षु जीव के दर्शन का अनुभव करता है। अब इसका लाभ क्या है कि ऐसी श्रुत भक्ति से भी दर्शन को तोड़ने का एक परिणाम जो है उसको श्रुत भक्ति कहने में आता है। कथा चली थी कि वैसे तो अंतर्मुख भाव अंतर्मुखी परिणाम ही एकांत से उपादेय है जी, और उसी अपेक्षा से सभी प्रकार के बहिर्मुख परिणामों का निषेध करने में भी आया है, में देखने में भी आता किया जाता है। तथापि क्या है बात इसमें कि ऐसे तो नहीं भाव है जहां दर्शकों का अनुभव करता हो, जहां कसाय रस टूटता हो, ऐसे प्रकार के जो परिणाम है जो दर्शकों के अभाव के क्रम में आते हैं उनका अस्वीकार कहीं भी किया गया नहीं है। ऐसी बात उसका स्वीकार रखते हुए वो निषेध आया, ये बात अपेक्षा से समझना। शुद्ध भक्ति से मुमुक्षु जीव के दर्शन का लाभ करता है और उससे ज्ञानादि भाव में निर्मलता विशुद्धता की प्राप्ति मुमुक्षु की भूमिका में इस भूमिका की मर्यादा में होती है। यद्यपि मानव उपास्य को कर्ता आदि बनाकर की जाती है,
क्या भक्ति में तो क्या है कि किसी न किसी निमित्त को पकड़ कर से बारे में भक्ति की जाती है,
परंतु अंतर्भावों के सापेक्ष होने पर ही यह भक्ति सार्थक है, अन्यथा ये भक्ति सार्थक नहीं है। कब भगवान की भक्ति करते हैं या अपने गुरु की सदगुरु की भक्ति करते हैं तो वो हमारे विपास मिले जाते हैं,
फिर भी अंतर्भाव के सापेक्ष
क्योंकि भक्ति में दुबारे भी होगी विकल्प भी हो रहा,
लेकिन अंतर्भावों की सापेक्षता इसमें है या नहीं है? अगर वो भाव अपेक्षित नहीं है तो इस भक्ति की सार्थकता कभी नहीं होती है। ऐसी बात ऐसे बोलने के शब्द और विकल्प वो बेकार जाते हैं। इसलिए सच्ची भक्ति तो आत्मस्पर्शी होती है, क्या सच्ची भक्ति को आत्मस्पर्श होती है और आत्मस्पर्श भक्ति होती है तो ऐसे योगी जीवों के हृदय को अंतर को अंतर में से हिला देती है। ऐसा नहीं करने की समय मालूम चलता है ऐसी चीज है भक्ति की एक ऐसी चीज होती है जो सच्ची भक्ति होती है। भक्ति इस तरह से भक्ति भी मोक्ष मार्ग का एक प्रधान अंग है। क्या ऐसी सच्ची भक्ति मोक्ष मार्ग का एक प्रधान अंग है। इसकी महत्ता समर्थ आचार्यों ने भी भक्ति पाठ की रचना की है पदों की रचना की है। क्या बताए भगवान अमृतचंद्र आचार्य समय सार की टीका करते करते 200 पद की रचना की है जिसको कितने संख्या है 200। तो इससे भी एक तो बड़ा करके रचना किया श्लोक लिखे गति में लिखते लिखते भाव विभोर हो जाते हैं तो पद्य में आ जाते हैं लिखते लिखते पद्य में आ जाते हैं। इसको आगे पीछे उसकी भाषा की रोकने व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। जैसे बोलते हैं तो इस शब्द के पीछे ऐसा बोले ऐसा बोले ऐसा आगे बोले ऐसा नहीं करना पड़ता है। जैसे उनको भी कोई रचना रचना के लिए उनको नहीं लगाना पड़ता है इसको तो हो ही जाती है
धारा चलाई
है इतनी धारा छूटती है निकलती है और वो भी अलग अलग छंदों में और ऐसे छंद होते हैं कि जो विषय के अनुरूप होते हैं
जी। भक्ति में अपनी कोई क्षति भी होती है अपनी कोई क्षति भी होती है भक्ति में
क्षति
सवाल ये लिखा है
प्रकाश में आता है
क्षति किस प्रकार की हुई
मंदिर जिनमें पूरी बेहतरी भक्ति करा रहे थे तो वैसे तो भाई लोग जो जिन आगे बैठे हैं तो मैंने पीछे बैठते हैं तो भक्ति करा रहे थे पीछे देखा जन्मों के प्रति तो किसी का ध्यान दिया तो चर्चा में तो व्यक्तिगत प्रश्न उतने सरल थे कि उनको कोई भी प्रश्न कोई पूछ सकते हैं। भक्ति में पीछे देख रहे थे तो क्या देखते क्या रहने की भक्ति देख रहा था आपने क्या देखा मैंने ये देखा इस प्रकार की मेरे में तो क्षति है कमी है ऐसा मैंने देखा तो क्या अपने अवगुणों को भी बोल देते हैं उनको तो कहें अवगुण को भी कहते हैं क्षति को नहीं देखना है फिर भी हमें परमात्माओं की किसी क्षति को
नहीं देखना
है वो अपने शक्ति बताते हैं किस्मत भी वो वंदनीय है महात्मा की सर्व प्रकार की प्रवृत्ति वंदनीय ही है वो क्षति बताते हैं वो भी जो जिनेन्द्र भक्ति के भाव है इनकी जो भाव भक्ति थी ऐसी भाव भक्ति मैं नहीं करा सकता क्या
तो प्रमोद आ
हाँ तो हो तो क्या हो गया, किसी ने प्रश्न व्यक्तिगत पूछा कि आपने मैत्री के भाव भक्ति देखी तो आप तो देखते थे नहीं तो क्या देखते थे, तो कौतूहल था पूछने वाले का, कोई कौतूहल था उसमें, कोई दम नहीं था प्रश्न में, क्योंकि उत्तर में बहुत दम है।
દ્રવ્યદ્રષ્ટિ વાળા ને પણ ભક્તિ ભાવે છે એટલે કેટલી દ્રવ્યદ્રષ્ટિ ની સૂક્ષ્મતા આવી ગયા સ્વામીજી ની,
દ્રવ્યદ્રષ્ટિ ભક્તિ કા ભાવ દેખો, દ્રવ્યદ્રષ્ટિ પ્રકાશ ભક્તિ परमात्मा कैसे होते हैं इसका परिज्ञान होता है। क्या कहते हैं कि इसकी इस प्रकार भक्ति की महत्ता होने से समर्थ आचार्यों ने भी भक्ति पाठ की रचना की है। उदाहरण प्राकृत ने भक्ति पाठ आचार्य बंधुकुंज देव के और भगवान तन्मनंदी देव के उपलब्ध है, अपने को अभी भी उपलब्ध है, उसकी कृति अभी भी मिलती है जिनागम में साधुओं की नित्य नैमित्तिक क्रियाओं में क्रियाओं के प्रयोग में आने वाली तीन प्रकार की भक्तियों का वर्णन भी मिलता है। हमारे जिनागम में साधुओं के बाद साधुओं के नित्य क्रम में तीन प्रकार की भक्तियों का वर्णन स्त्रियों का प्रयोग मिलता है। इस भांति इस प्रकार से साधु की आराधना के समय नवधा भक्ति तथा साधु के नित्य के कृति कर्म में चतुर्मिष्ट स्तवन का विवरण मिलता है। ये समाज का आधार है। इस भक्ति के अंत में ये भी कहना है कि अनेक दोषों की निवृत्ति और आत्मा के योग्य अनेक गुणों की प्राप्ति का ये कारण समझकर भक्ति का महत्व अवधारण करने योग्य है। ये कोई एलर्जी का विषय जिगुंसा का विषय नहीं हो जाना चाहिए। जिगुंसा नहीं एलर्जी, अरे भक्ति करते हो बस भक्ति करते हो, भक्ति सच्ची भक्ति सही भक्ति कैसे होती है उसका ज्ञान करके ऐसे भाव अपने में नहीं हो तो उसकी क्षति का निवारण कर लेना चाहिए। उल्लेखनीय है कि परम कृपालु देव ने अति सुंदर और अभिनव भाव प्रयोग द्वारा फरमाया है कि मौलिकता है कृपालु देव की, कि ज्ञानी गुरु की भक्ति शुद्धाकरण से प्राप्त होती है। ये पत्र शायद हमने इस बात को उल्लेखित किए है, पत्रांक 825 है, थोड़ा गूढ़ और गहन विषय है। पत्र तो बहुत सुखा एक पुरस्कार है लेकिन इसमें गंभीरता बहुत है। माता तो गांव से जाकर स्मरण हुआ दर्ज दिया आशी है पत्र में मन शुक्ला देव से भाई निवरी पर लिखा हुआ है। परम पुरुष की मुख्य भक्ति
उसकी मुख्य भक्ति
परम पुरुष की मुख्य भक्ति उत्तरोत्तर गुण की वृद्धि हो ऐसे सर्वतन से प्राप्त होती है। सत्पुरुष की भक्ति परम पुरुष की भक्ति उत्तरोत्तर गुण वृद्धि हो मनुष्य के परिणाम में उत्तरोत्तर गुण वृद्धि होती है ऐसा परिवर्तन से उसका भक्ति भाव वृद्धिगत होता जाता है। प्रश्न नहीं होता है कोई कभी बनने से भक्ति हो जाती है या कोई अच्छा जरा आने से भक्ति हो जाती है आवाज अच्छी होने से कोई भक्ति हो जाती है या गाने की धमक अच्छी होने से भक्ति हो जाती है संगीत का विशेषज्ञ होने से ऐसा नहीं गुण की वृद्धि होने से जो परिवर्तन होता है उसमें भक्ति की वृद्धि होती है। इसलिए चरण प्रतिपत्ति परिवर्तन क्या कहा चरण मैंने आचरण श्रद्धाचरण की उपासना अपने आचरण में सिद्धि विशुद्धि आती है उस रूप जो परिवर्तन है ऐसा परिवर्तन होना ज्ञानी की मुख्य आज्ञा है
बराबर बराबर
और ऐसी आज्ञा की उपासना करने वाला ही परम पुरुष की भक्ति करता है क्या
बराबर
भक्ति का निर्माण आचरण प्रदान कर दिया तो बल देना मनुष्य को क्या मिलता है कि अगर हम हमारा सर्वर्तन ठीक नहीं करेंगे हमारा वर्तन सर्वर्तन नहीं होगा हम सत्पुरुष की भक्ति नहीं करते हैं ऐ भक्ति करते ऐसा हो जाता है क्योंकि ये तो ज्ञान की मुख्य आज्ञा है उसकी उपासना स्वर्य और ज्ञान की भक्ति करते हैं कहां की बात है बिल्कुल गलत बात है उनकी बात है लिखते लिखते दिमाग में वो पत्र आ गया तो उसका सारांश नहीं दिया है पत्र का सारांश क्या है कि मौलिक बात है कौन अभिनव प्रयोग है भक्ति का ये भक्ति की बात तो सुनी होगी लेकिन शुद्धाचरण प्रतिपत्ति उस रूप से वर्णन यही ज्ञानी की मुख्य आज्ञा वही भक्ति है ये बात अभिनव है नई बात है जो चलते नहीं आजकल समाज में जो बात नहीं चलती है ऐसी बात उन्होंने वर्ष है 32 वर्ष का पत्र है 885 नंबर का एक पुष्कर में क्या क्या बनाया देखो दिखाए तो एक पुष्कर मिल गया मछली वाले को पुष्कर में क्या बनाया कितना तत्व बनाया उल्लेखनीय है उल्लेखनीय है कि परम गोपाल जी की अति सुंदर और अभिनव भाव द्वारा कलम चली है इस पत्रांक 850 में कि ज्ञानी की भक्ति शुद्धाचरण से प्राप्त होती है सरलता से प्राप्त होती है क्या परिज्ञान से प्राप्त होती है नहीं आपने लिखा देखो बहुत शुक्र लिखता है बहुत हेतु से लिखते हैं अथवा ज्ञानी की वो आज्ञा है उस आज्ञा की उपासना रूपी सरवर्तन है वही ज्ञान की भक्ति है क्या उसकी मुख्य आज्ञा सरवर्तन है उस सरवर्तन की जो उपासना है
यही ज्ञान की भक्ति है। अगर ऐसा नहीं हो तो ज्ञान की भक्ति नहीं है। जिस जीव को ज्ञानी के मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय हो, क्या पत्र लेना है उसके बाद कल शुरू में ज्ञानी के बाद तो चलना क्या बात है, वो बात है खुद इसका मूर्तिमंद कोई सत्पुरुष है तो वो शोभा है, तो उल्लेख किया संपाल किया इनके ध्यान के बाद पत्र लिख रहे हैं, इनके परिवार पर वो पत्र लिख रहे हैं, संबल हो गए उनका हमको स्मरण आता है, पत्रों को उनको लिख रहे हैं लेकिन हमको स्मरण आता है तो बात आएगा कैसे कैसे थे वो, कि जिसका ज्ञानी के मार्ग पर चलने का अद्भुत निश्चय था, निश्चय था उन्हें लिया अद्भुत अद्भुत निश्चय था, हमको आश्चर्य होता है कैसा नहीं कर रहा हुआ, इसलिए उनके सत्संग करते थे अद्भुत निश्चय था, वो हमको बार बार स्मरण में आता है, स्मरण आता है बार बार हमको स्मरण में आता है,
अद्भुत निश्चय माने जीवन दाव में लगा दिया,
समर्पण दाव पर लगा दिया, जीवन दाव
दाव पर लगा दिया,
समर्पण करना है जीवन
दाव दाव पर अपना जीवन लगा दिया, कोई बात जिस जीव को ज्ञानी के मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय हो, ऐसा जीव अवश्य इस संसार चक्र से छूट जा रहा है। देखो मास्टर की ये मास्टर की आई उतना इस संक्षेप पकड़ लेते हैं, हमको ज्ञानी के आज्ञा में आज्ञा आकृत पड़े थे, प्रसन्न निरोध पड़े थे, हमारी कोई बात अनुकरण करना है, ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय हो अवश्य गारण के संसार चक्र से छुट जाता है, ऐसे भक्तिवान जीव को पात्रता के अंगभूत ऐसा वैराग्य, पात्रता के अंगभूत ऐसी सरलता नम्रता समाधि गुण सहज मात्र में उद्भव होते हैं, लाने पड़ता है, ऐसे गुण संपन्न हो जाते हैं, एक चाबी हाथ का आगे सभी दुर्गुणों का ताला खुल जाता है, सरलता आ जाती है, मध्यस्थता आ जाती है, नम्रता आ जाती है, समाधि सभी जो मुमुक्ष की भूमिका के योग्य गुण है सभी उनको प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे पात्र हो जाते हैं सहज मात्र, जिससे क्रोधादि चारणी प्रकृतियां स्वयं उपशांत हो जाता है, कि कभी किसी को किस प्रकृति का जोर होता है, कभी किसी को किस प्रकृति का जोर होता है, तो मान माया लोग में तो चौकड़ी चार प्रकृति को चार में से उसको चौकड़ी कहते हैं, इनके लिए चार भेद है, संसार इंद्रिय प्रत्याख्यान और निप्रत्याख्यान, तो पहली जो अंतर्मन भी है उस पर घाव पड़ता है, उस पर प्रहार होता है, और उसकी शक्ति मोक्ष की भूमिका में ही टूटने लगती है, इसकी शक्ति टूटती है, इसका रस टूटता है, रस और शक्ति एक आता है, उसको यहाँ उपशांत होती है ऐसा कहते हैं, बंद होता है ऐसा नहीं कहते, क्योंकि चारित्रों की प्रकृति है ना, इसलिए कषाय की बंधता का यहाँ विषय है, ये है उपशांतता का विषय है, कषाय में उपशांतता शक्ति गल जाती है। ऐसे जीव को कृणादि चारों में प्रकृति का स्वयं शांत होती है। जीव को अनेक प्रकार के प्रतिबंधों के निरसन हेतु भक्ति एक सबसे सुगम साधन है। भक्ति का प्रकरण चलता है तो ऐसा सुगम साधन ज्ञान मार्ग में अपने हाथ में कितना सुगम साधन है तो उस सुगम साधन में क्या होता है कि सभी प्रकार के प्रतिबंध है वो टूट जाते हैं। चार प्रकार के प्रतिबंध लिए, लोक प्रतिबंध, कुटुंब प्रतिबंध, विकल्प प्रतिबंध, और देह प्रतिबंध, देह प्रतिबंध, वो चार प्रकार के प्रतिबंध हैं। टूटने के लिए सुगम साधन है। यद्यपि आत्मज्ञान के बिना सर्व दोष और सर्व दुखों का क्षय नहीं होता है, अतः उनकी दुर्घटना को देख करके आत्मज्ञान इतना सुगम नहीं है, दुर्लभ है, उसकी दुर्घटना को देख करके निष्कारण प्रभाशील ऐसे सत्पुरुषों में आत्मज्ञान के कारणभूत ऐसा जो भक्ति मार्ग उसको प्रकाशित किया है और कुशल विशेष करके उस बात को मान लाए जो सर्वरूप सुगमता से स्वर्ण रूप है, जो शर्ण में ज्ञानी रूप है।